जैसे ही अयांश ने अजीब सी स्मेल आ रही है, दिनकर जी और राधे ने एक दूसरे की ओर देखा। अजीब सी स्मेल? कैसी? दिनकर जी बोले। क्या पता मालिक, हमने तो एक घंटे पहले ही कमरा साफ किया था और हमें तो नहीं आ रही है। पता नहीं अयांश बाबा कैसी स्मेल की बात कर रहे हैं, राधे बोला। ही अयांश उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? जाकर कमरा देखो, भरा पड़ा है उस स्मेल से, सांस नहीं ले जा रही। तुम्हें नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, मुझे तो आ रही है और वो स्मेल यहां भी आ रही है, झटकाकर राधे को छोड़ते हुए। राधे छूटते ही ऊपर की ओर भागा, अभी देखते हैं। अयांश गुस्से से इधर उधर चलने लगा। आरवी को उसे परेशान देख एक पल तो बुरा लगा, पर दूसरे ही पल खुश होते हुए खुद से बोली, जब इन्हें हमें तंग करने में मजा आता है तो हमें क्यों इनको परेशान देख फर्क पड़े। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आरवी के हाथों, देखते जाइए। अगर हम बर्बाद हैं तो छोड़ेंगे तो आपको भी नहीं। आप जिस लहजे से पेश आते हैं हम भी उसी लहजे से जवाब देना जानते हैं मिस्टर मेहरा, क्योंकि जैसे को तैसा, आपको वैसे ही समझ आएगा। तभी दिनकर जी बोले, शांत बेटा, पता नहीं तुझे कौन सी सुगंध आ रही है, हमें तो नहीं आ रही है, देखने गया है राधे, तुम गुस्सा ना करो। तो और क्या करूँ दादू, पता नहीं आपको ये गंदी वाली स्मेल आ क्यों नहीं रही है। और आपको नहीं, मुझे प्रॉब्लम है हैवी स्मेल वाली चीज़ों से, आपको तो पता है। मेरा तो यहाँ खड़ा रहना ही मुश्किल हो रहा है, और रूम का सोचो तो कदम आगे की बजाय पीछे जा रहे हैं। हुआ क्या है आज घर में, कहीं किचन में तो कुछ ऐसा वैसा नहीं बना डाला? अयांश की नज़र आरवी पर पड़ी तो वो किचन की ओर जाते हुए बोला। दिनकर जी उसके पीछे जाते, नहीं बेटा, किचन में कुछ अलग नहीं हुआ और ना ही घर में कुछ हुआ है। आरवी किचन की ओर देखते हुए, ये तो हम आज आपके रूम में गए थे, तभी ड्रेसिंग पर रखे आपके कलेक्शन को देख ही समझ गए थे कि आपको ज्यादा स्मेल वाली चीजें पसंद नहीं। सब कुछ नॉर्मल टाइप था, वहां मौजूद सब चीजें ज्यादा खुशबूदार नहीं थीं, चाहे वो ऑयल हो, परफ्यूम हो, फेस क्रीम हो या पाउडर हो, मुस्कुराते हुए। बस फिर क्या, पता चल गया कि पक्का आपको हैवी स्मेल से एलर्जी होगी और हमने उसी को टारगेट बना लिया आपको सबक सिखाने के लिए मिस्टर मेहरा। अयांश किचन में चेक कर वापस आते हुए, वहां तो नहीं आ रहे, मेरे रूम में बहुत और कुछ यहां भी आ रही है। हॉल में वापस आकर नाक से कोड़ते हुए, दिनकर जी, अरे अंशु बेटा, हमारे घर में तो सब जानते हैं और हम तो ऐसा कुछ लाते ही नहीं ना मंगवाते जिसमें ज्यादा सुगंध हो, और गंदी स्मेल तो नहीं आ रही है, सब सही ही लग रहा है। आरवी मन ही मन, उल्टी खोपड़ी है इनकी, अच्छी स्मेल भी गंदी ही लगेगी। मीठे से दूर रहने वाले करेला खाने वाले अकड़ू बेदर्द इंसान, नहीं मिस्टर डेविल। अयांश चिढ़ते हुए, कुछ तो हुआ है डिफरेंट, आई एम श्योर, जब मैं गया था तब तो नहीं था। इधर उधर देखते हुए, तभी आरवी अयांश की ओर आते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर मेहरा, आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इतना सुनते ही अयांश ने कहा, स्टॉप। आरवी वहीं लग गई, जब मैं आया था तुम नीचे आ रही थी, तब अजीब सी स्मेल आई, तुम पास से गुजरी तो तब मैंने नोटिस नहीं किया, कहीं तुमने तो कुछ। इतना कहते ही अयांश आरवी के फट पास आया और पास आते ही फट से दूर भी हो गया। इसी से आ रही है, क्या लगाया तुमने ये अजीब सा? आरवी हैरानी से मासूमियत के साथ, अजीब सा? हाँ अजीब सा, जिसने मेरा सांस लेना दुष्कर कर दिया, पूरे घर को खराब कर रखा है। अयांश नाक के आगे हाथ लगाकर आरवी पर चिल्लाते हुए बोला, बस कीजिए मिस्टर मेहरा, जैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं आपको लगता है मैंने ऐसा कुछ लगाया है? आप तो नॉर्मल हैं, दिनकर जी की ओर देख आरवी ने कहा। तभी दिनकर जी आरवी की ओर आए, हमें तो पता नहीं चलता, पर इसको ज्यादा सुगंध वाली चीजें पसंद नहीं, कह रहा है तुमसे आ रही है, क्या लगाया है? सूंघते हुए आरवी अपने बालों में हाथ फेरते हुए, ओ याद आया, मैंने चमेली का तेल लगाया था अपने बालों में, बालों के लिए अच्छा होता है ना, और मुझे खुशबू भी बहुत पसंद है चमेली के तेल की, मुस्कुराते हुए। ये सुनते ही अयांश के माथे पर बल पड़ गए और मुट्ठी गुस्से से भींज गई। दूर खड़ा आरवी को खाने जाने वाली नजरों से देखने लगा और दांत पीसते हुए बोला, व्हाट द हेल। तभी दिनकर जी ने एक नजर अयांश को देखा और फिर आरवी को, क्या किया बेटा आपने, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, अयांश की ओर देखते हुए। तभी अयांश छपट कर उसकी ओर आने लगा कि अपने कदम वहीं रोक कुचाते हुए बोला, और कुछ आता भी है तुम्हें करना? और ये चमेली का तेल तुमने क्यों लगाया, कहाँ से लाई? और दादू, आपको इतने हैवी स्मेल वाले ऑयल का पता क्यों नहीं चला? दिनकर जी की ओर देखते हुए, हमें खराब नहीं लगती, तकलीफ भी नहीं होती, तो बेटा ध्यान नहीं दिया ज्यादा, और ना हम ऊपर गए, और ये भी अभी आई है नीचे। पर बेटा आपके पास ये तेल कहाँ से आया, अंशु को पसंद नहीं है, दिनकर जी आरवी से बोले। वो हमने मंगवाया राधे भैया से, दादी माँ लगाती थी तो बस लगा लिया, बाल खराब हो गए थे। हमें नहीं पता था मिस्टर मेहरा को पसंद नहीं ये तेल, आई थिंक राधे भैया भूल गए होंगे, प्लीज मिस्टर मेहरा उनको मत डांटना। तेल तो मैंने लगाया है, मैंने मंगवाया, और आप भी तो करते हैं वो कान जो हमें पसंद ना हो, तो एक हमसे भी हो गया जो आपको पसंद नहीं, चमेली के तेल वाला। अयांश की ओर मासूमियत से देखते हुए, जस्ट शट अप, अयांश चिल्लाया। ये सुनते ही दिनकर और आरवी दोनों ने कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। दिनकर जी ने हाथ के इशारे से आरवी को शांत रहने को कहा। तभी अयांश फिर बोला, मेरे कमरे में तेल कैसे पहुंचा? आरवी खामोश रही तो अयांश फिर चिल्लाया, बोलो। आरवी दिनकर जी की ओर देखते हुए, कभी शटअप कहते हैं कभी बोलो, प्रॉब्लम क्या इनकी? वो तेल ना मैं लगाने जा रही थी तो देखा मेरा मंगलसूत्र ये वाला, अपने गले की ओर इशारा करते हुए, ये गले में था नहीं, मैंने ढूंढा तो कमरे में मिला नहीं, सोचा यहां वहां गिरा मिला तो आप गुस्सा करेंगे, फिर मुझे टॉर्चर करेंगे, पसंद नहीं ना आपको मेरा खाली गला, तो बस उसे ढूंढते ढूंढते आपके कमरे तक चली गई तो वहीं मिला। वो जब पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे तब गिर गया था, तो उस टाइम तेल की बॉटल छूट कर गिर गई मिस्टर मेहरा वहां, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, नहीं तो साफ करवा देती, कंधे उचकाते हुए। सच कह रही हो तुम? कहीं जानबूझ कर तो? अयांश ने सवालिया नजर से आरवी को देखा। जानबूझ कर करने की आपकी आदत है, हमारी नहीं, हम तो अनजाने में ही ऐसा कुछ कर जाते हैं कि आपकी बैंड बच जाती है, फिलहाल जानबूझ कर ही किया है, अब सच थोड़ी कहेंगे, अपने बचाव के लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा, मरना थोड़ी है ये कहकर कि चमेली के तेल का आपके रूम में मैंने छिड़काव किया है, मन ही मन आरवी ने खुद से कहा। चुप क्यों हो, बोलो। हाँ हाँ क्या बोलूं मैं, सच भी कहूंगी तो झूठ लगेगा और अनजाने में हुई गलती जानबूझकर किया गुनाह समझेंगे आप, विश्वास तो आप करते ही हम पर। अयांश कुछ कहता तभी दिनकर जी बोले, अनजाने में हुआ है, शांत हो जाओ बेटा, अभी साफ सफाई हो जाएगी, चली जाएगी स्मेल, राधे गया है ना? तभी राधे भागा नीचे आया और अयांश से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बोला, सही कह रहे थे अयांश बाबा मालिक, पूरे कमरे में बहुत खुशबू आ रही है। दिनकर जी, पता चल गया है वो गलती से गिर गया था आरवी से वहां, तुम जाकर साफ कर दो। अयांश, और हाँ खुशबू नहीं बदबू, तुम भूल कैसे गए और कैसे लाकर दिया इसको वो चमेली का तेल? राधे आरवी की ओर देखते हुए, माफ करना दिमाग से निकल गया, हमें भी नहीं पता था इस तेल की इतनी खुशबू होती है, इन्होंने कहा हमने ला दिया अयांश बाबा। तेरी तो? अयांश उसकी ओर आने लगा कि बीच में आकर दिनकर जी ने उसे रोक दिया और राधे को जाने का इशारा किया। राधे भागकर वहां से चला गया।
अब बस करो बेटा, इतने सालों से ये तेल घर में नहीं आया, मैं भी भूल गया इसकी सुगंध, राधे के साथ भी यही हुआ होगा, उसे भी परख नहीं होगी। अब और गुस्सा नहीं सुना तुमने? मुझे नहीं, इसको बोलो जाकर अपने बाल धोए और मेरा कमरा जल साफ, बिल्कुल स्मेल नहीं रहनी चाहिए, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे ही रूम में नहीं जा सकता मैं, कह अयांश बाहर की ओर चला गया। दिनकर जी उसे जाते देख बोले, ये लड़का भी ना सुनता ही नहीं किसी की। सही कहा आपने, आपके पोते की नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है, काश बचपन में दो लगाए होते, शांत रहना सिखाया होता तो यूं उबाले ना मारते हर पल। ये सुनते ही दिनकर जी आरवी की ओर मुड़े तो आरवी फट से बोली, सॉरी, क्या आपको भी दिक्कत है इस खुशबूदार तेल से? नहीं, पर उसे है, जाओ जाकर धो लो बाल और कोई और तेल लगा लेना, ये मत लगाना ठीक है, मैं उसे देखता हूँ, बाहर होगा, कह दिनकर जी भी बाहर चले गए। आरवी मन मन हंसते हुए, अगर उनको दिक्कत है तो रहे, मुझे उससे क्या, बाल धोने हैं, चल आरवी बाल धोते हैं। इतना कह आरवी वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद ही राधे ने अयांश का कमरा साफ कर दिया, यहां तक कि अयांश के कहने पर उसके रूम और पूरे घर में अयांश का फेवरेट परफ्यूम भी छिड़क दिया था, जिसकी वजह से अयांश घर के अंदर आ पाया। अब उसे चमेली के तेल की स्मेल ज्यादा नहीं आ रही थी। दिनकर जी के कहने पर वो लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। अयांश बाबा, जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसा ही किया, अब आपका कमरा साफ है? राधे बोला, हाँ, तो अब मैं नहीं आने वाला उस कमरे में, आज तो बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी पूरी स्मेल थोड़ी जाएगी उस गंधे ऑयल की, सबसे ज्यादा वहीं गिराया उसने वो चमेली का तेल, वो तेल की बोतल फेंकी, पते चले फिर गिरा दे इधर उधर वो तेल, राधे को डांटते हुए। नहीं, फेंकी तो फेंक देगा, आरवी नहीं लगाएगी अब वो तेल, और तुम आज मेरे कमरे में सो जाना या स्टडी रूम में, ठीक है, कल तक उड़ जाएगी सुगंध, दिनकर जी ने अयांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। खाना दो, अयांश बोला और राधे दोनों को खाना परोसने लगा। तभी ऊपर से नीचे आती आरवी मन ही मन खुद से बोली, चू चू चू, अफसोस जताते हुए, मिस्टर मेहरा, एक तेल ने आपकी क्या हालत कर दी, छोटा सा मेरा वार और आप घर से बाहर। तभी दिनकर जी ने आरवी की ओर देखा, आओ बेटा आओ बैठो। जी कहते ही जैसे ही आरवी अयांश के पास वाली चेयर पर आकर बैठी, व्हाट द हेल कहते अयांश फट से उठकर दूर हो गया। क्या हुआ? आरवी बोली, तुमने बालों से तेल साफ नहीं किया, आपको मेरे गीले बाल दिख नहीं रहे हैं? अपने गीले बालों में आरवी हाथ फेरते हुए बोली, अच्छे से धोए हैं या नहीं? ड्रम लगाया था क्या तेल का? मुझसे ना रुका जा रहा, आई एम गोइंग दादू, कहे अयांश ने चेयर के पीछे से अपना कोट उठाया और चला गया। आरवी उसे जाते देख मन ही मन बोली, बाय बाय मिस्टर मेहरा। तभी उसने राधे और दिनकर जी की ओर देखा, सॉरी, धो तो लिए बट बहुत खुशबूदार था तो इतनी जल्दी स्मेल जाती नहीं, एक दो दिन रहेगी, दिनकर जी दरवाजे की ओर देखते हुए। जब तक ये नहीं जाएगी वो घर नहीं आएगा। आरवी फट से, कौन? मैं? दिनकर जी, नहीं, चमेली के तेल की सुगंध। आप खाना खाइए अब। आरवी जी, राधे, वो तेल की बोतल हम फेंक देते हैं। नहीं, वो मैंने फेंक दी, आरवी राधे से बोली और फिर खाना खाते हुए खुद से कहती है, ऐसे कैसे फेंक दूं? वो मेरे पास ना आए इसका तोड़ है चमेली का तेल। सॉरी दादाजी, आपके कहने पर भी मैंने बाल नहीं धोए, बस थोड़े गीले ही किए। धोए ही नहीं तो तेल जाता कैसे? मिस्टर मेहरा को और तंग करना है, इसलिए अभी मुझे इस तेल के साथ रहना है। सच में बहुत डेंजर तेल है, पहली बार यूज किया है। थैंक्स गॉड मुझे मिस्टर मेहरा जैसी प्रॉब्लम नहीं हाई स्मेल वाली चीजों से, नहीं तो मेरा ये प्लान धरा का धरा रह जाता। राधे और दिनकर जी सो चुके थे। आज राधे ने अयांश से बहुत डांट सुन ली थी, इसलिए वो अब और सामने नहीं आना चाहता था अयांश के, इसलिए उसके घर आने से पहले ही अपने कमरे में घुस गया। अयांश घर लौटा तो सीधे ऊपर अपने कमरे में गया, पर उन्हीं कदमों से बाहर निकल आया। स्मेल तो अभी भी है। तभी आरवी दरवाजे पर खड़ी अयांश से बोली, हेलो मिस्टर। मिस्टर अयांश ने टेढ़ी नजरों से आरवी की ओर देखा तो आरवी भौंए उचकाती हुई मुस्कुरा दी। क्या है? चमेली का तेल चाहिए? इतना सुनते ही अयांश उसकी ओर आने लगा तो आरवी फट से बोली, वेट वेट, यहाँ चमेली का तेल है, मेरे बालों से भी नहीं निकला पूरी तरह। खामखा ज्यादा परेशानी होगी आपको, कमरे से तो बाहर हो ही, कहीं दुनिया से बाहर ना हो जाओ। बकवास बंद करो। रियली? बट आप रिएक्ट तो ऐसे कर रहे थे जैसे अभी मर जाएंगे इस चमेली की खुशबूदार सुगंध से। खुशबूदार? बदबूदार बोलो, जीना दुष्कर हो जाए, गर्दन झटकाते हुए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आरवी अपना सिर खुजाते हुए धीरे से बोली। क्या कहा? यही कि यूं गर्दन ना मारिए, झटका लग जाएगा। पहले ही एक तेल ने आपको हिलाकर रख दिया है, बौखलाए हुए हो, आधी रात को हॉस्पिटल वाले हुई चपेट में आ जाएंगे। मुंह बंद रखो अपना, समझी? नहीं समझी, आप समझा दीजिए ना पास आकर, मुस्कुराते हुए। जानता हूँ जानबूझकर किया है तुमने, इतनी भोली नहीं हो तुम जो ये सब अनजाने में हुआ हो तुमसे। साफ दिख रहा है तुम्हारा किया तुम्हारी आंखों में, अयांश ने एकटक आरवी की ओर देखते हुए कहा। अगर सच में आंखें पढ़ना जानते हैं तो मेरे मन की तकलीफ भी पढ़ लीजिए, साफ साफ दिख रही है वो भी मेरी आंखों में मिस्टर मेहरा। ये बोलते वक्त आरवी की आंखों में नमी उतर आई। ये सुना अयांश ने अपने कदम वापस लिए और वहां से नीचे चला गया। आरवी ने, गुड नाइट मिस्टर मेहरा, आई होप आपको नींद अच्छी आए। आगे सीढ़ियों के पास आकर अयांश के पीछे से उसने आवाज दी, अयांश जाते जाते बैड बनाकर गुड कहती हो, आपसे ही सीखा है। इतना सुन अयांश नीचे रुका और गर्दन घुमाकर ऊपर खड़ी आरवी को एक नजर देख फिर बाहर चला गया क्रमशः।